ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिके। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पठन स्कंद 5 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 13 बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप सभी हमारे साथ पढ़ेंगे। भवाय नासाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देहयोगं अव्यक्तदिष्टं जनतांगधत्ते। भवाय नासाय च कर्म कर्तुं भवाय नासाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भवाय शोकाय मोहाय सदा भवयाय सुखाय दुखाय च देहयोगं सुखाय दुखाय च देहयोगं अव्यक्तदिष्टं जनतांगधत्ते। अव्यक्तदिष्टं जनतांगधत्ते। भवाय नासाय च कर्म कर्तुं भवाय नासाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भवाय शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देहयोगं सुखाय दुखाय च देहयोगं अव्यक्तदिष्टं जनतांगधत्ते। अव्यक्तदिष्टं जनतांगधत्ते। आप लोग पढ़ेंगे। भवाय नासाय च कर्म कर्तुं
शोकाय मोहाय सदा भवाय काय दुखाय च देहयोगम् अव्यक्ततिष्ठं जनतांगधत्ते कर्तु योगं ताय चतुर्पर्तु शोकाय मोहाय सदा भवाय भवाय नाशाय च कर्म कर्तु शोकाय मोहाय सदा भवाय सुखाय दुखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनतांगधत्ते भवाय नाशाय च कर्म कर्तु सुखाय दुखाय च देहयोगम् अव्यक्तदिष्टं जनतांगधत्ते
शब्दार्थ भवाय जन्म के निमित्त नाशाय मृत्यु के लिए च भी कर्म कार्य कर्तुं करने के लिए शोकाय शोक के लिए मोहाय मोह के लिए सदा सदैव भवाय भय के लिए सुखाय सुख हेतु दुखाय दुख हेतु च भी देह योगं भौतिक देह से संबंध अव्यक्त भगवान द्वारा दिष्टं निर्देशित जनता जीवात्माएं अंग हे प्रियव्रत धत्ते धारण करती हैं। अनुवाद और तात्पर्य अवेचणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है, हे प्रियव्रत भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। आप लोग दोहराएंगे, हे प्रियव्रत भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। तात्पर्य, जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई हैं वे सुखोपभोग के लिए आई है, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता 3:27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान के आदेशानुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छानुसार कार्य करने की भगवान छूट देते हैं, किंतु उनके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं तो कुछ जीव दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15:15 श्लोक में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपमोहनम् च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, किंतु यह सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उनकी पूर्ति के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनके इच्छानुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना सलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्वे पुरा इमं विवो निर्मायस्य ते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोलंकर शिष्ट भगवान वचन सी में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी सुनने हैं महाराज प्रियव्रत का चरित्र। जैसे कल असीम कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि प्रियव्रत का मतलब होता है जिनको क्या ठीक लगता है, व्रत ही जिनको ठीक लगते हैं, व्रत ही जिनके प्रिय हैं वो प्रियव्रत हैं। तो प्रिय व्रत जो है, यदि उनके व्रत प्रिय नहीं होते तो वास्तविकता यह है कि कभी भी वो अपनी बाल्य अवस्था में ही महाराज स्वयंभू मनु के वो बड़े पुत्र हैं, प्रिय व्रत उसके बाद में उत्तानपात है, उत्तानपात छोटे हैं इनसे, लेकिन उनके पिताजी इनको राज देना चाहते तो उस समय इन्होंने राज स्वीकार नहीं किया और सीधे कहां के लिए निकल गए, जंगल के लिए निकल गए, तपस्या करने के लिए निकल गए। तो प्रिय व्रत जिनको व्रतों से ही, व्रत ही जिनके प्रिय हैं, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी प्रियव्रत महाराज से उनके जो है भगवत भगवान के प्रति समर्पण से इतने प्रश्न थे कि उन्होंने अंत में कहा कि प्रियव्रत महाराज के जो कार्य हैं इतने अद्भुत कार्य हैं कि भगवान के अलावा और इस संसार में कोई भी दूसरा उनके कार्यों को कर नहीं सकता। जो कार्य प्रियव्रत महाराज ने कर दिए भगवान के अलावा दूसरा कोई भी उन कार्यों को कर नहीं सकता। मनुष्य का करना तो दूर रहा, उन कार्यों के बारे में सोच भी नहीं सकता है जो कार्य प्रियव्रत महाराज ने किए थे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि उन्होंने जो है सूर्य जैसे प्रकाश करता है, उनको ये ठीक नहीं लगा कि सूर्य जो है जहां रहता है वहां प्रकाश रहता है, लेकिन सूर्य के दूसरे भाग में क्या रहता है, अंधकार रहता है। तो इसलिए उनको ये जो है ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि एक कैसे हो सकता है एक साइड में प्रकाश हो और एक साइड में अंधकार हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना रथ लिया और जैसे सूर्य का रथ आगे चलता है ऐसे उनके पीछे पीछे किसका रथ चलने लगा, प्रियव्रत महाराज का रथ चलने लगा। तो जहां अंधकार होता था उस रथ से फिर क्या होने लगा, उजाला जो है होने लगा। तो सारी जगह कहीं भी अंधकार नहीं हुआ। तो बाद में फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि ठीक नहीं है भाई, जीवात्मा सारे दिन काम करती रहेंगी, उनको मालूम नहीं चलेगा अंधकार कब है और दिन कब है। तो फिर ये ठीक नहीं, तब जा करके उन्होंने इसको रोका। उनके रस से ये समुद्र देख रहे हैं, 7 समुद्र उत्पन्न हो गए थे। उनके पहियों के जो है उस रगड़ से क्या हुए, 7 समुद्र बना दिए थे उन्होंने। और उन्होंने जो है सीमाएं निर्धारित कर दी थी, देशों की सीमाएं निर्धारित कर दी थी जिससे कोई झगड़ा ना करे, इसलिए बाउंड्री कर दी थी पहाड़ों की, नदियों की, समुद्रों की, वनों की, ऐसे ऐसे बाउंड्री लगा दी थी। तो इसलिए प्रियव्रत महाराज का जो चरित्र हम सभी सुन रहे हैं बहुत अद्भुत चरित्र है। तो कल हम जैसे सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं, उन्होंने जो है कहा कि हे पौत्र, क्योंकि प्रियव्रत जो है ब्रह्मा जी के पुत्र के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज, इसलिए प्रियव्रत से बात करने के लिए ब्रह्मा जी बहुत लंबा चौड़ा कुछ प्रवचन दे रहे हैं। हालांकि वो अपने पुत्र को भी दे सकते थे, समझा सकते थे, लेकिन सत्यता यह है कि पिता इतना अपने पुत्र को प्रवचन नहीं दे सकता है जितना अपने नाती को दे सकता है, क्योंकि नाती को तो जानता है कि उसने बचपन में खिलाया है, गोद में जो है मलमूत्र जो है उसके ऊपर किए हैं,
बड़ा दुलारा है, तो इसलिए जो पिता का या जो दादा का जो प्रेम होता है वो पुत्र के प्रति बहुत ज़्यादा ही कुछ होता है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा लंबा चौड़ा जो है उन्होंने उनके सामने प्रियव्रत महाराज के सामने जो है लेक्चर दिया है, और उन्होंने कहा कि हे पुत्र तुम निबोध में मैं जो कुछ भी बात कह रहा हूँ उसको तुम क्या करो ठीक ठीक से सुनो। ऐसा नहीं है दादा ने कहा है इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं, इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। इसलिए उनको सतर्क कर रहे हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो क्या है तुम जो है ध्यान से सुनो। और उन्होंने क्या कहा तो कल के श्लोक में सुने थे कि उन्होंने कहा था कि देखो भगवान का जो आदेश है ये जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं अपने उससे नहीं बोला, अपनी इच्छा से नहीं बोला, मैं किसकी इच्छा से बोल रहा हूँ ये भगवान की इच्छा से बोल रहा हूँ। और भगवान का जो आदेश है इस संसार की कोई भी हस्ती बड़ी से बड़ी हस्ती भी भगवान के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती है। चाहे प्रभुपाद जी ने लिखा है चाहे ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत तक सबसे सृष्टि के पहले जीव है ब्रह्मा, उनसे बड़ा कोई नहीं, और चींटी पर्यंत तक हालांकि चींटी से भी लेकिन चींटी समझ लेना चाहिए। तो जितने भी सृष्टि के अंदर हैं चाहे वो पाताल लोक में हैं चाहे वो मृत्यु लोक में हैं चाहे वो स्वर्ग लोक में हैं सभी लोकों के बासी मिलकर के भी भगवान के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। चाहे वो अपनी बल से विद्या से शक्ति से सामर्थ्य से जो कुछ भी उनके पास में है सबको मिला करके भी भगवान का आदेश सर्वमान्य माना जाता है। इसलिए क्या करना है इसलिए प्रभुपाद जी ने जो है बताए हैं लास्ट में बताए हैं, इसलिए जैसा भी हो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में, परिस्थिति कैसी भी हो सकती है चाहे परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, हर परिस्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही करें। ब्रह्मा जी जो है इस बात को जो है बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान का आदेश सुप्रीम है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो इसलिए जब टाल नहीं सकता उनको तो जैसे कल बताए थे जैसे कहते ना क्या बोलते हैं आपनी होती आपनी करनी होत नहीं प्रभु करी तत्काल। हम जो कुछ कर रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा ये डाउटफुल है, इसमें संदेह है, लेकिन प्रभु करी तत्काल, लेकिन प्रभु जो करना चाहेंगे उसमें नो डाउट, उसमें फिर कोई संदेह वाली बात नहीं होती। तो इसलिए क्या करना है तो करना ये है हमें कि प्रत्येक परिस्थिति में चाहे वो परिस्थिति अनुकूल है या परिस्थिति प्रतिकूल है हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए अपनी जो भी शक्ति है बल है बुद्धि है जो कुछ भी हमारे पास में है उस क्या करना चाहिए उससे भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। यही जो है हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान न रखते हुए प्रत्येक वस्तु का उपयोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए, अपनी बुद्धि का यही उचित उपयोग है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है भाई जो ऐसा नहीं करते हैं तब तो उनके लिए जो है दूसरा श्लोक बोला जा रहा है यदि कोई भगवान के आदेश का उल्लंघन करने का प्रयास करता है भगवान के आदेश की अवहेलना करता है तो उसको फिर ये तैयार रहना चाहिए किसके लिए ये दूसरे श्लोक के लिए। तो इसमें जो है बताया जा रहा है भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भवाय सुखाय दुखाय च देह योगं अव्यक्त दिष्टं जनतांग धत्ते। बोलते हैं ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज से बोलते हैं हे मेरे पुत्र जनता अंग अंग बोल रहे हैं अंग बहुत ही मतलब क्या बोलते बात्सल्य में ये शब्द है। कभी कभी भगवान भी अर्जुन को अंग बोले हैं परिचित महाराज भी सॉरी परिचित महाराज को सुखदेव जी अंग बोले हैं। तो ये शब्द कैसा है, बहुत जब कोई बहुत प्रिय होता है वो बात्सल्य से ये जो है अंदर से निकलता है, तो अंग शब्द दे रहे हैं। और अंग शब्द बोल करके बोलते हैं कि यदि कोई भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है, उनके आदेश की अवहेलना करता है, तो भवाय उसके लिए फिर क्या चालू हो जाएगा, जन्म, उसको संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। यदि हमने भगवान के आदेश का उल्लंघन किया तो क्या होगा, भवाय उसका जन्म होगा, और जन्म होगा तो फिर साथ साथ में क्या है, उसके साथ में मृत्यु भी उसकी होगी। और इसके बाद में कर्म करतुम, उसको जो है कार्य करने के लिए मजबूर किया जाएगा, उसको कर्म करना ही होगा। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा था, जब युद्ध नहीं कर रहा था अर्जुन, और अर्जुन ने स्पष्ट किया कि प्रभु मैं तो बजाय इस युद्ध से इतना सारा नरसंहार होगा जिसमें अपने ही स्वजन मरेंगे, इससे तो अच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं तो जंगल में जा करके भीख मांग करके खा लूंगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान ने उनको समझाया कि तू सोच रहा है कि जंगल में जा करके और तू जो है भीख मांग करके खा सकता है, लेकिन तू इतना समझ लेना चाहिए कि प्रवृत्ति नैव मुच्यन्ते मुच्यन्ते सनई सनई, जो स्वभाव है स्वभाव जेन कौनते है निबद्ध स्वेन कर्मणा। अर्जुन तुम जंगल में भी जा करके, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, इसलिए तुम जंगल में भी जाओगे तो यदि कोई दो पशु या दो जानवर ये झगड़ा करेंगे, तुम तुरंत क्या करेगे, एक का जरूर पक्ष लोगे, और वहां भी तुम्हारी जो युद्ध की प्रवृत्ति है तुरंत वो प्रकट हो जाएगी। इसलिए बैठ रहकर तुम जो है हम कह रहे हैं हमारे कहने के अनुसार यही तुम युद्ध करो। तो इसलिए यहां पर कर्म करतुम, कार्य करने के लिए हमें क्या किया जाएगा, विवश किया जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि जो कार्य नहीं करना चाहिए उन कार्यों को करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है, होता है कि नहीं होता है। जैसे हम देखें कंस के, उसमें जब कंस जो है माता देवहूती और वसुदेव जी को जब विदाई का समारोह हो रहा था, तो उस समय कंस घोड़ों की लगाम पकड़ करके और रथ में बैठा हुआ था, और उसकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि मैं क्या करूं, मैं स्वयं जो है अपनी बहन का रथ हांग करके लेकर के उनके घर पहुंचा करके आऊं। लेकिन जैसे ही उसने जो है लगाम घोड़ों की पकड़ी, चाबुक हाथ में उठाया और जैसे ही किटकारी मारी, वो किटकारी मारने वाला ही था कि उसके पहले ही जो है देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि हे कंस, तू जिसका रथ हांकने जा रहा है उसकी अष्टमी संतान तेरा क्या करेगी, वध कर देगी। बस इतना ही बोलना था। इसको सुनते ही कंस ने क्या किया, तुरंत जो हाथ में लगाम थी उस हाथ से देवकी के क्या पकड़ लिए, केस पकड़ लिए, और जिस हाथ में चाबुक था उस हाथ में क्या ले ली कंस ने, तलवार ले ली, और तुरंत जो है देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। तो कर्म करतुम, कभी कभी ऐसे कार्यों के लिए भी हमें मजबूर कर दिया जाएगा जिन कार्यों के लिए हम करना नहीं चाहते हैं फिर भी करा दिए जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और फिर जब फिर आता है शोकाय, जब कार्य हमसे हो जाते हैं बाद में हम क्या करते हैं, सर पकड़ करके फिर बैठ जाते हैं, हाय हाय ये हमने क्या कर दिया, अब तो कर दिया, अब क्या है, करने से अब क्या होगा। तो शोक इससे बच नहीं सकते हैं, ये सब प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगे एक साथ में। और मोहाय फिर अपने स्वजनों के प्रति हाय हाय इनका क्या होगा मेरे जाने के बाद में, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर कैसे खाएंगे पिएंगे, तो ये मोहाय मोह। और सदा भाय भयाय, सदा भयाय भय चालू हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, मर्द पर्यंत तक चलता ही रहता है। शायद हो सकता है कि जब तक 5-6-7-8 साल के रहते तब तक हो सकता है कि भय नहीं रहता, जब तक नाबालिग है कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन थोड़ा भी जब समझ में आने लगती है ना तब से जो है फिर भय चालू हो जाता है। स्कूल में अपने से सीनियरों से भय रहता है, वह टीचर से, अब तो खैर टीचर से कम भय रहता है, पहले बच्चे टीचरों से बहुत भय करते थे, गुरुजी उनको दिखाई दे गए तो उनका पेशाब निकल जाता, अरे गुरुजी आ गए, उधर से निकल जाते थे। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब गुरुजी उनकी हालत ख़राब होती है। यदि स्टूडेंट दिखाई दे गए तो गुरुजी अपने गाड़ी का जो है रास्ता मोड़ लेते हैं, अरे चलो उस गाड़ से चलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है यदि नहीं गया तो क्या क्या बोल देंगे। तो ये भय, संसार में हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे से भयभीत है, और सबसे बड़ा इस संसार में भय किसका है? मृत्यु का भय है। मृत्यु कितना भी कोई दमदार हो लेकिन फिर भी मृत्यु से डरता है। ऐसा कहा जाता है शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वो भी मृत्यु से क्या करता है? वो भी डरता है मृत्यु से, तो वो भी डरता है। तो भयाय सदा भयाय, सुखाय दुखाय, और सुख और दुख। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कितने विशेषण दिए, सुख केवल एक छोटा सा उसमें दिया है सुखाय, बाकी सब समस्या ही समस्या बताई है। तो इतनी सारी समस्या आकर के थोड़ा सा वो सुख आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में फिर क्या है? दुखाय, फिर जो है दुख बोल दिया, फिर तुरंत दुख आ जाएगा हमारे लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं बोलते हैं कि देह योगम, इस देह के साथ साथ में जुड़ी हुई है। और अव्यक्त दिष्टम जनता अंग धत्ते है अंग, मैं जीवात्माओं को क्या करता हूं? भगवान बोलते हैं अव्यक्त दृष्टे, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं क्या करते हैं? इन सारे जीवात्माओं के लिए ऐसा शरीर प्रदान करते ही हैं, जिससे इनका वो क्या कर सके? अनुभव कर सके दुखों का, शोक का, भय का, इन सारी चीज का वो क्या कर सके? अनुभव कर सके। इसलिए भगवान उनको ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जिसमें बार बार वो सोचता रहता है, पछताता रहता है। आप सभी सुने होंगे सप्तमें स्कंद में, जिस समय भगवान ने जो है शिशुपाल का वध कर दिया था, और उस समय शिशुपाल का जब वध हुआ तो शिशुपाल की जो आत्मा थी वो क्या हुई? थोड़ा आकाश में जाकर कुछ समय स्थिर रही, और फिर वो क्या की? भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई थी। तो जब प्रवेश कर गई तो उसी समय जो है युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया था, ये कैसे संभव है? जिस शिशुपाल ने जो है जन्म से ही, जब से उसने जन्म लिया थोड़ा सा होश आया उसी समय से, जब तुतली वाली बोली बोलता था, तुतला करके बोलता था, उसी समय से वो जो है क्या करता था? कृष्ण को गाली देता था, तुतला तुतला करके गाली देता था। होता है ना, पानी पीता था एक घूंट, फिर एक गाली दे देता था, फिर वो डाइजेस्ट हो जाता, फिर पानी पीता था, फिर गाली देता, फिर वो डाइजेस्ट होता था। ए तार था, हाँ, मतलब बचपन से वो गाली देता था, भगवान को देता था। लेकिन उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब उनका अंत समय जब देखा, भगवान के द्वारा जब मार दिया गया, तो उनकी जो आत्मा थी वो कहाँ प्रवेश कर गई? भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्षों तक सर्दी गर्मी वर्षा भूख प्यास सहन करके उसके लिए अखत प्रयास करते हैं, फिर भी उस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, और शिशुपाल ने जो है बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न कर दिया था, तो जो है नारद जी जो है उनके उत्तर देते हैं। हे युधिष्ठिर, बोलते हैं कि ये जो शरीर है, जो हमें जो शरीर दिया है, और भगवान का जो शरीर है, हमें जो शरीर दिया है वो किसके लिए दिया है? तो निंदन तस्तव सामर्थम, बोलते हैं निंदन स्तव सत्कार न्यकारार्थ कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। निंदन स्तव सत्कार और न्यकारार्थ, ये शरीर हमें किसके लिए मिला है? तो निंदा का इसमें हम अनुभव करें, कोई हमें मतलब हमारे थोड़ा सा आलोचना करे तो हमें फीलिंग हो, कुछ डर कुछ कष्ट हमें हो, और स्तुति का हमें क्या थोड़ा सा सुख अनुभव हो। निंदव इस्तव सत्कार, कोई जो है सम्मान करे हमारा तो हमें मालूम होने होता है कि हाँ भाई ये हमारा सम्मान कर रहा है और हमें बहुत अंदर से सुख की अनुभूति होती है। लेकिन न्यकारार्थ यदि कोई अपमान करता है तो हमें कैसा लगता है, बहुत कष्ट होता है। कभी कभी तो बहुत से ऐसे होते हैं जो जब उनका अपमान हो जाता है, कहीं स्वभाव के अंदर अपमान हो जाता है तो फिर समाज के अंदर उन्होंने मरने पर्यंत तक भी अपना मुख नहीं दिखाए थे। ऐसे ऐसे कुछ लोग हुए, इतना वो फीलिंग कर जाते हैं अपने जो है अपमान का। तो नारद जी बोल रहे हैं कि हमें जो जो शरीर दिया है ये केवल शरीर का यही काम है कि इसमें हम ये भोग करें। शोकाय हमें महसूस होना चाहिए, शोक क्या होता है। मोहाय मोह महसूस होता है। दुखाय दुख महसूस होता है। सुखाय सुख महसूस होता है। जन्म का कष्ट महसूस होता है और मृत्यु का कष्ट महसूस होता है। ये हमें इसीलिए शरीर दिया गया। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो इस प्रकार का नहीं होता, उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल दूर रहती हैं। जैसे सूर्य के सामने अंधकार बिल्कुल दूर रहता, ऐसे ही भगवान का जो शरीर होता है वो सच्चिदानंदमय होने के कारण वो इन सारी चीजों से बिल्कुल परे होता है। तो इसलिए जो शरीर दिया है ये शरीर का प्रक्रिया कब चालू हो जाती है, जब हम भगवान के आदेश की अवहेलना कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में लिख रहे हैं, पहली लाइन में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई हैं वे सुकोप भोग के प्रयोजन से ही आई हैं। संसार के अंदर जितनी भी जीवात्मा आई वो सब क्या चाहती हैं, सुख चाहती हैं, सुख के लिए आई। इसलिए हर व्यक्ति संसार में ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है। संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है, चाहे देवता है, चाहे चींटी है। चींटी भी जो है क्या नाम है, एक महात्मा बोल रहे थे एक बार द्वारका में भगवान रुक्मिणी के साथ में भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी जी उनको भोजन करा रही थी, तो एक चींटा उधर से दौड़ता हुआ आ रहा, तो भगवान उस चींटा को देख करके हंस गए। जब हंसे तो रुक्मिणी जी ने पूछ लिया, प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं वैसे बस हंसा। बोला नहीं नहीं आप तो वैसे तो हंस नहीं सकते हैं, आपके हंसने के पीछे कोई ना कोई तो कारण तो रहता है, आप ऐसा बिना कोई कारण के कुछ भी नहीं करते, इसलिए बताइए क्या कारण है। तब जो है भगवान द्वारकाधीश ने रुक्मिणी से कहा कि देख ये चीटा जो देख रही है ना। बोला हाँ, तो चीटा तो मैंने बहुत देखे है, क्या कोई नया चीटा है क्या। बोला हाँ ये नया है, ये 10 बार इंद्र बन चुका है, और अब देखो गुड़ की भेली को देख करके, उसकी खुशबू के देख करके कैसा जो है उसको खाने के लिए दौड़ रहा है। तो इस संसार के अंदर प्रायः देखा जाता है कि हर व्यक्ति सुख के लिए घूम रहे हैं, लेकिन सुख कैसे प्राप्त करना है, तो दो प्रकार से संसार के अंदर व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। पहला है प्रधान और दूसरा है परियोराजन। अविवेकेन कल्पिते, तो प्रधान और परयो, प्रधान बोलते हैं कि एक जीवात्मा जो है अविवेकेन, जो कैसी है, मंद बुद्धि है, जिनका विवेक पूरा ठीक से नहीं है, अल्प बुद्धि वाली है, वो संसार में सुख कहां से प्राप्त करती है, तो प्रधान से प्राप्त करती है। प्रधान का मतलब प्रकृति के संसर्ग में रह करके सुख ढूंढते हैं। सुख तो सभी को चाहिए, सब संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख ढूंढने के जो है भगवान ने क्या नाम नारद जी दो रास्ते बता रहे हैं। पहला है जो है प्रधान परियोराजन अविवेकेन कल्पते, जो कुछ जीवात्मा है इस संसार के अंदर सुख ढूंढती है वो कहां से ढूंढती है, वो प्रकृति के संसर्ग में जो है सुख ढूंढ रहे हैं। तो जब हम प्रकृति के संसर्ग में आकर के, गुणों के संसर्ग में आकर के जब हम सुख ढूंढते हैं इस संसार के अंदर, तो पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, जब ये जीवात्मा इस प्रकृति के संसर्ग में आकर के भूंगते प्रकृति जान गुणान, एक प्रकृति के गुणों के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है जब इनका भोग करता है तो कारणम गुण संगो अस्य सत असत योनि जन्मसु, उसी समय उसका क्या चालू हो जाता है, सत असत योनि जन्मसु। सत बोलते हैं जिनमें सुखों की बहुलता है, सुखों की बहुलता को अर्थात ऐसे शरीर उनको दे दिए जाते हैं जिनमें सुखों की बहुलता है, या असत बोलते हैं जिनमें दुखों की बहुलता है। कुछ शरीर जो है उनको अच्छे जिसमें अधिक सुख मिलता है और कुछ शरीर ऐसे प्रदान किए जाते हैं जिनमें उनको दुख मिलता है, लेकिन दोनों ही क्या है, समस्या के कारण है अर्थात बंधन के कारण है। इसके अलावा बोलते हैं यदि कोई प्रकृति से अपना संसर्ग न जोड़ करके परयो अर्थात भगवान से जो सुख प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान से सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए यहां प्रभुपाद जी ने लिखा है सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए, जो ऐसा करता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात प्रभुपाद जी जो है बता रहे हैं कि सुख सबको चाहिए, तो वास्तव में हमें सुख कैसे प्राप्त करना है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सबसे जो उत्तम मार्ग है सुख प्राप्त करने का है वो है भगवान की शरणागति स्वीकार करके, और भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते हुए यदि हम संसार में तो कार्य करेंगे तो बोलते हैं क्या ना, इस संसार में सुखी रहेंगे और फिर जो दूसरा जीवन भी होगा वो कैसा होगा, बहुत उत्कृष्ट होगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है ये मैं मत इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये मैं मत इदम नित्यम अर्थात जो मेरे मत के अनुसार कार्य करता है, मैं मतम मेरे मत के अनुसार कार्य करता है। भगवान का मत क्या है, तो भगवान का मत है जैसे इसमें बता रहे हैं, भगवान का मत है कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके, भगवान को आत्मसमर्पित करके और उनकी ही इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए, ये भगवान का मत। इसलिए मैं मतम का मतलब होता है जो मेरा मत है, भगवान का मत क्या है, पहले जो है समर्पण करो भगवान के चरणों में और इसके बाद में क्या है, समर्पण करके और भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ये भगवान का नियम मत है। भगवान बोलते हैं कि मैं भी ऐसा कार्य करता हूं, भगवान ने कहा है कि हालांकि संसार के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसके लिए संसार की कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी मैं इच्छा रखता हूं या उनको प्राप्त नहीं हो रही है, दोनों मेरे को किसी भी संसार की वस्तु की इच्छा भी नहीं है और मेरे लिए सारी वस्तु सुलभ है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, लोक संग्रम एवं मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए मैं फिर भी मैं कार्य करता हूं। इसलिए बोलते हैं कि तुम क्या करो, इसी प्रकार जो है जैसे भगवान कार्य करते रहते हैं ऐसे ही हमें क्या करना होगा, उनके आदेश अनुसार हमें भी जो है कार्य करना होगा। तो कैसे कार्य करना है, तो इसमें जो है कुछ विशेषण दे रहे हैं, बोले ये मैं मत इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। अनुतिष्ठन्ति का मतलब अनुतिष्ठन्ति का मतलब उनके नजदीक बैठता है, अनु का मतलब नजदीक पास में, तिष्ठन्ति मतलब बैठता है। अनुतिष्ठन्ति का मतलब ये भी होता है कि भगवान के मत के अनुसार और किसी के मत को जो है पालन नहीं, अन्य किसी देवी देवताओं का मत स्वीकृति नहीं है, इसमें अनुतिष्ठन्ति का मतलब होता है केवल भगवान के मत के अनुसार जो कार्य करता है। तो बोलते हैं श्रद्धावंतो, कैसे, तो श्रद्धा के साथ में। श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, कृष्ण भक्ति कहले, मतलब जो हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्ण सेवा कर रहे हैं, इससे बढ़कर के और ब्रह्मांड में कोई दूसरी सेवा नहीं है, ये ही जो है सुप्रीम सेवा है, ऐसा विश्वास करके भगवान की सेवा में लग जाना, इसको बोलते हैं श्रद्धावंत। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यथा मत तथा, ये क्या बोलते हैं, यथा यथा मत तथा पथ, हाँ यथा यथा मत तथा पथ। यथा मत तथा पथ का मतलब होता है जिस जो जिसके मन में आई वो वैसा करे। जैसे हजारों अंधे जो हैं, हजारों अंधे अपना अपना जो है अलग अलग पथ चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो थोड़ा भी आंख जिसकी काम कर रही है तो उसको तुरंत जो है अंधों को चाहिए कि आंख वाले का साथ चले। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जो हमें कार्य करना चाहिए, हमें भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना चाहिए। तो श्रद्धावंतो अनसूयंतो, अनसूयंत का मतलब होता है मतलब ईर्ष्या न करना। इसके तीन विशेषण दिए हैं, निंदा न करना, क्रोध न करना और किसी में दोष दृष्टि नहीं रखना। निंदा नहीं करना, निंदा जो करता है ना उसका सपोर्ट करना है और ना ही अपनी स्वीकृति देनी है या मौन रहना है। जो निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, तुरंत क्या करना चाहिए, उसका जो है प्रतिशोध करना चाहिए। निंदा, क्रोध, कभी कभी जो है विकट परिस्थिति आ सकती है, फिर भी उसमें भगवत सेवा के लिए यदि हमें कुछ विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो भी उसमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाओ घर घर में और क्या करो, ये भिक्षा मांगो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, सबसे जा जा करके घर घर में बोलो एक जो है कि आप कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की ही शिक्षा करो। तो जब वो घरों में जाते थे तो कुछ लोग तो उनका सत्कार करते थे, लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, अपमान करते थे, बोलते थे अरे लगता है कि ये जो है चोरों के क्या हैं, ये लोग जो हैं चोरों के जासूस हैं, ये देखने आए हैं घर में क्या क्या रखी है, पकड़ लो इनको, जा नहीं पाए, अनेक अनेक प्रकार के जो है उनको जो है बोलते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने चेतन महाप्रभु से ये नहीं कहा कि प्रभु आपने इस प्रकार की सेवा मुझे क्यों दी, कुछ अच्छी सेवा देना चाहिए, नहीं किया। तो क्रोध नहीं करना, निंदा नहीं करना, अब समय नहीं है इसलिए हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। और दूसरा क्या है, तीसरा जो है दोष दृष्टि नहीं करना किसी के जो है। जैसे अद्वैताचार्य जब कभी कभी भगवत गीता के श्लोकों को जो पढ़ते थे तो जो व्याख्या करते थे तो उसमें जो है भक्तिमय व्याख्या करते थे, कुछ कुछ श्लोकों में व्याख्या करते करते वो जो है ठीक से उसको समझ नहीं पाते थे, तो उससे क्या होता था, वो चुपचाप खाना पीना छोड़ करके सो जाते थे। वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि जो है भगवान ये प्रभु आपने जो है किस प्रकार के इस उल्टे सीधे जो है श्लोक लिख दिए हैं जो हमारी समझ में नहीं आता है। वो सोते थे और भगवान क्या करते थे, उसी समय जो है स्वप्न में आकर के और उन श्लोकों का जो भाव अर्थ है अद्वैताचार्य को समझा देते थे। ये भागवतम उसमें दिया है, क्या नाम है, चैतन्य भागवत में ये लीला आती है। तो यदि हम ऐसा करते हैं, श्रद्धावंतो अनसूयंतो, ईर्ष्या नहीं करते, अनसूय हैं, अनसूय का मतलब निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, क्रोध नहीं करते हैं, जो सेवा मिली है गुरु के द्वारा अधिकारियों के द्वारा और उसमें दोष दृष्टि नहीं करते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि यदि हम उन कार्यों को ठीक से नहीं भी कर रहे हैं बाई चांस ते अपि बे भी कौन, जो इन नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, यदि वो भी श्रद्धा रखता है और इस प्रकार जो है थोड़ा बहुत करता है तो वो भी मुक्त हो जाता है, और जो इनका पालन करता है तो उसके बारे में तो कहा ही फिर किया जा सकता। तो इसलिए यहां पर जो बताया जाता कि यदि सुख चाहिए तो हमें कहां से लेना चाहिए, भगवान की सेवा से लेना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है और अपने भक्तों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आपको जो है एक छोटा सा हम जो है भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के बस में रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो 5 मिनट में हम एक कथा कहेंगे, क्योंकि जगन्नाथ की कथा हमें जो है थोड़ा सा याद आ रहा है कितने भगवान भक्त वत्सल हैं अपने भक्तों के प्रति। तो एक रघु करके जो है भगवान के भक्त हुए हैं और वे सारी सत्य कथाएं हैं, कोई मतलब ऐसी कलोल कल्पना नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, हालांकि वो रामचंद्र के भक्त थे, लेकिन एक बार वो जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ के स्थान पर रामचंद्र जी बैठे हैं, बलराम के स्थान पर लक्ष्मण बैठे हैं, और जहां सुभद्रा है वहां कौन बैठी है, सीता जी बैठी हैं। उन्होंने जो है राम सीता लक्ष्मण के जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन नहीं किए, किसके दर्शन किए, उन्होंने सीताराम इनके जो है दर्शन किए। इसलिए उस दिन से उनको विश्वास हो गया कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है, स्वयं उनके ही आराध्य देव है। तो एक बार जो है वो माला बना करके लेके गए अपने ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को माला अर्पण करी, लेकिन पुजारियों ने क्या किया, वो माला को जो है फेंक दिया, बोला नहीं ये माला नहीं चढ़ सकती थी, क्योंकि उसमें जो धागा लगाया था वो किसका लगाया था, तो जो क्या नाम है, केला के जो छिलके हैं उनको फाड़ करके उसका धागा लगाया था, इसलिए प्रभुपाद वो क्या नाम है जो जगन्नाथ के जो सेवक थे पुजारी थे उन्होंने जो है बोल दिया कि नहीं ये माला नहीं लग सकती। तो बेचारा जो क्या नाम है रघु था वो बहुत जो है दुखी हो गया, और दुखी होकर के और अपने घर में आकर के बिना कुछ खाए पिए सो गया, सोया नहीं, रो रहा था और अपने को कोस रहा था कि देखो धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, मैं छोटी सी, मेरे पास तो और कुछ है नहीं, एक छोटी सी मेरे पास में यही भेंट थी, मैं माला ठाकुर जी के लिए लेकर गया, लेकिन मेरा जो है इतना दुर्भाग्य है कि जगन्नाथ ने मेरी वो माला तक स्वीकार नहीं की, पुजारियों ने जो है उसको जो है इस प्रकार डांट फटकार करके भगा दिया। तो जब घर में आकर के जो है खाना पीना छोड़ करके जब रो रहा था, तो इधर जो है रात्रि के समय जगन्नाथ जी का जो है शयन आरती होता है, उस समय उनका पूरा वो होता है, क्या नाम है उसको बोलते हैं, श्रृंगार होता है, बड़ श्रृंगार उसको बोलते हैं। तो जब उनका बड़ श्रृंगार होने के लिए जा रहा था, तो जब उनको वस्त्र पहनाए जा रहे थे, तो जगन्नाथ जी ने एक भी वस्त्र को स्वीकार नहीं किया, फूल जो है माला चढ़ाए, जगन्नाथ जी ने एक भी माला को स्वीकार नहीं किया, जो भी वस्त्र पहनाते थे, पहनाने का प्रयास करते, उसी को उठा करके फेंक देते थे। तो जितने भी बार प्रयास किया, कोई भी वस्त्र जगन्नाथ जी ने धारण नहीं किया, और जितने भी फूल भगवान के लिए माला उनको डेकोरेट करने के लिए अलग अलग स्थानों में फूल लगाए, सारे फूलों को फेंक दिया। इससे बेचारे पुजारी दुखी हो गए, उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, जगन्नाथ नहीं हमारे जो है सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तुरंत खाना पीना छोड़ करके वहीं सो गए, ठीक है ठाकुर जी का क्या आदेश है इसलिए हम जानना चाहेंगे। तो उसी समय जो है रात्रि में जगन्नाथ ने कहा, तुम लोग जो है, वो मेरा एक भक्त आया, तुमने केवल उसके बाहरी रूप को देखा, तुमने ये नहीं सोचा को कितने भाव से बना करके लाया, कितने प्रेम से बना करके लाया, और उसकी माला को जो है उठा करके फेंक दिया, और उसको जो है ऐसे डांट फटकार कर दी जैसे कोई कुत्ते बिल्ली को कर देता। अरे कम से कम देखना चाहिए ना, वो बेचारा कितना प्रेम से मेरे लिए माला बना कर लाया, और तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। अब देखते हैं वो जो है तब से जाकर घर में क्या कर रहा है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तब से ही रो रहा है। तो भला आप बताइए, जब मेरा भक्त जो है इस प्रकार दुखी है, तो मैं कैसे इतना ठाटवाड़ से ड्रेस पहन करके श्रृंगार करके मैं रह सकता हूं, मैं भी जो है स्वीकार नहीं करूंगा, तब तक जाकर के उनको मना करके नहीं लाएंगे। तो तुरंत जो है पुजारी बेचारे सतर्क हो गए और तुरंत उसके घर में लाए, घर में गए उसको मनाया, उनको प्रणाम किए और भाई उनकी बहुत प्रशंसा किए, प्रशंसा करके जब उनको भगवान के सामने लाया, उनकी माला को ठाकुर जी को पहनाया, और जैसे ही पहनाया तो भगवान फिर क्या किए, सारे कपड़े सारे जो है श्रृंगार फिर से जो है एज इट धारण कर लिए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके दोनों का बड़ा प्रेम हो गया, और जगन्नाथ जी का रघु के साथ में जो भाव था वो सखावत उनका भाव था। तो एक बार जो है रघु बीमार पड़ गए, और बीमार इतनी जोर से बीमार पड़े, इतने बुरी तरह बीमार हुए कि मल मूत्र भी जो है खाट में ही करने लगे। तब जो है जगन्नाथ जी को जो ये सारी चीजें देखा नहीं गया, और जगन्नाथ जी एक दिन जो है क्या किए, एक बच्चा का रूप धारण करके जो है उसके घर गए, घर जा करके पहले उसको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, फिर उसके सारे बेड बिस्तर को सफाई किया, घर को सफाई किया, और उसमें इत्र सेंट वगैरह धूप बत्ती अगरबत्ती जो है लगाई, जिससे बदबू सब खत्म हो जाए। और ऐसे वो महीनों महीनों भर तक ऐसे कार्य करते रहे। एक दिन जो है रघु ने देखा कि भाई ये बालक कौन है, इतना सारा ऐसे का सेवा कर रहा है मेरी। तब उनको जब थोड़ा सा स्वस्थ हुआ तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वो बालक कोई और नहीं, वो कौन है, जगन्नाथ है। तो जब देखा कि जगन्नाथ ही ऐसा कार्य कर रहे हैं तो रघु की आंखों से आंसू निकल पड़े और जो है भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया, प्रभु आप जो है भला ऐसा कार्य क्यों किए? आप चाहते तो किसी को भी ऑर्डर कर सकते थे, आप चाहते तो मुझे बीमारी क्यों होने देते इतना है, आप ठीक भी तो कर सकते थे, आप इतना जो है सेवा क्यों किए? तो उन्होंने कहा, रघु हाँ मैं आपको ठीक कर सकता था, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जैसे मेरे भक्त मेरी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, जितना आनंद जो है मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आता है, उससे हजारों गुना आनंद मुझे अपने भक्तों की सेवा करने में आता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए रघु मैं भला जैसे तैसे तो मेरे को चांस मिला था, ये अवसर मिला था, और इसको फिर भला मैं कैसे छोड़ सकता था। एक बार की बात थी, इसी को बस दो मिनट में समाप्त करके बोलता हूँ। जब एक बार की बात थी कि दोनों जो है आपस में खेला करते थे, मित्रवत व्यवहार करते थे, तो इसलिए ये सारा जो है राजा तक को ये मालूम चल गया था रघु का जगन्नाथ के साथ कैसा संबंध है, एक सखा का संबंध है। एक दिन जगन्नाथ ने कहा, रघु चलो कटहल खा करके आते हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ चलेंगे? बोला राजा के बागान में चलेंगे और रात्रि में चलेंगे, उसके बागान में बड़ी पकी पकी कटहल हैं और चल करके खाएंगे। रघु ने कहा, प्रभु जो है रात्रि में हम चोरी करने के लिए जाएंगे? अरे हम राजा को वैसे ही बोल देंगे, राजा अच्छी अच्छी कटहल हमें यहाँ दे करके जाएगा। उन्होंने कहा, अरे तू नहीं जानता रघु, जो आनंद चोरी करके जिस वस्तु को खाने में आनंद आता है, वो ऐसा जो है दे करके तो मैं भी खा सकता था, लेकिन इतना आनंद अच्छा नहीं आता है। आप जानते हैं ना, मेरी माता की जो है, जब मैं वहाँ था गोकुल में था, उस समय यशोदा मैया के पास में हजारों हजार भंडार भरे रहते थे मक्खन के, दही के, दूध के मक्खन, लेकिन उसमें मेरे को इतना आनंद नहीं आता था। लेकिन जो गोपियाँ बना करके रखती थी रघु, में जो है उस माखन के लिए, उस मक्खन के लिए मैं क्या करता था, हर समय मैं लपलपा रहता था कैसे जो है उस माखन को मैं खाऊं। तो उसमें जो आनंद है, अपने माखन में इतना आनंद नहीं आता था, जितना आनंद नहीं आता था उतना आनंद, कई करोड़ों गुना आनंद आता था दूसरों के घर चोरी करके खाने से, मांगने से नहीं, चोरी करके खाने से। इसलिए चलो, अब बेचारा रघु क्या करे, फंस गया। बोला, प्रभु जैसे आप बोलते हैं चलते हैं। तो उन्होंने कहा, कैसे चलेंगे? बोला, रात्रि के समय चलेंगे, मैं बताता हूँ, तुम क्या करना, ऊपर चढ़ जाना। बोला, ठीक है। और कोई पकी पकी बिल्कुल खुशबूदार और बड़ी कटहल तोड़ना, और तुम क्या करना, मैं इशारा करूँगा तो फिर तुम छोड़ देना, तो मैं नीचे पकड़ लूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो रघु चढ़ गए रात्रि के समय, और भगवान ने कहा, रघु चढ़ गया? बोला, हाँ प्रभु चढ़ गया। ठीक है, कटहल तुमको मिल गई? हाँ प्रभु मिल गई। कितनी है? अरे बहुत बड़ी है। कैसी? अरे खुशबू के मारे हालत ख़राब है मेरी। तो बोला, ठीक है, अब ऐसा करो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो जैसे उन्होंने छोड़ा तो भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो कटहल जो है क्या कि इतनी जोर से नीचे गिरी और फूटी, जब बड़ा भयंकर जो है आवाज हुई, धड़ाम से नहीं आवाज हुई, तो जो चौकीदार था उसने देखा, रे कोई चोर आ गया, और दौड़ करके आया, आकर के जो है देखा, रे कटहल फूटी पड़ी है, क्या बात है, यहाँ कौन कौन फोड़ा है? तो चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं देखा दिया, जब ऊपर देखा तो रघु बैठा हुआ था। अरे, बोला, रघु तुम? अब जो है वो क्या नाम है, वो गार्ड था, चौकीदार था, राजा के पास दौड़ा, महाराज महाराज देखा बागान में आज जो है रघु कटहल चोरी करते पाया गया। राजा ने कहा, क्या बात करते हो, रघु कैसे चोरी कर सकता है? बोला, नहीं महाराज मैं देख करके आया हूँ, चलो आप बताता हूँ। अब जो है राजा उनके साथ में आया, तो राजा ने जब देखा कहाँ है, तो बोला, देखो वो बैठा है। और रघु बेचारा कुड़कुड़ाते हुए जो है डाली बैठा, अब क्या करे, क्या कैसे कहे कि हाँ मैं चोरी करने के लिए आया क्या नहीं आया। तब जो है राजा ने कहा कि रघु तुम्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता थी, तुम चाहते केवल आदेश करना था, मैं सबसे टॉप के जो है कटहल तुमको क्या कर देता था, वहाँ पहुँचा देता था, लेकिन तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत क्या थी। अब रघु कैसे बताया कि मैं चोरी करने के लिए नहीं आया, वो कालिया है ना, वो ज़बरदस्ती मेरे को खींच करके लाया। रघु ने कहा प्रभु क्या नाम है, हे राजा मैं अभी जो है नीचे आता हूँ, फिर मैं सारी बात बताता हूँ। तब उसने बताया कि देखो वास्तव में मेरी चोरी करने की कोई भी इच्छा नहीं थी, लेकिन आपका वो जग्गा है ना जग्गा, वो जबरदस्ती मेरे को खींच करके लाया और उसने कहा चलो हम चोरी करते हैं और राजा के यहाँ जो है कटहल खाते हैं, तो इस कारण मेरे को आना पड़ा राजन। तो वो लोग भी जानते थे, राजा भी समझता था कि वास्तव में रघु चोरी नहीं करता है, लेकिन जगन्नाथ जी जो है जबरदस्ती उनको खींच करके लाए, इसलिए राजा का और उसके प्रति रघु के प्रति बड़ा प्रेम बढ़ गया और जो है उनकी श्रद्धा भी बढ़ गई। तो ये है भगवान, भगवान के साथ में यदि इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जैसे रघु के लिए उन्होंने किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण के।